वर्तमान से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बलमान महान जी विचरे हमारे ध्यान। पृष्ठभूमि निकालो, पेज नंबर 3 पे प्रवचन सार की तत्व प्रदीप का टीका चल रही है और उसके साथ में जयसेन आचार्य की जो तात्पर्य वृत्ति टीका है उसमें जो आवश्यक समझा जा रहा है उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। पेज नंबर 3 पर 3 लाइनें छोड़कर इस ग्रंथ राज की विषय वस्तु को 3 महाधिकारों में विभाजित किया गया है, जहां एक ओर तत्व प्रदीप का टीका में आचार्य अमृतचंद्र उक्त 3 महाधिकारों को ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका नाम से अभिहित करते हैं, वहीं दूसरी ओर तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार और सम्यक चाराचाराधिकार कहते हैं। देखो, सम्यक दर्शनाधिकार, ज्ञानाधिकार, चारित्राधिकार ये नाम तो एक कॉमन है, कोई भी जब इनका वर्णन करेगा मोक्ष मार्ग का तो 3 चीजों का वर्णन करेगा, सम्मान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और उनकी डिटेल चीजें बतानी है तो 3 अधिकारों में विभक्त करेगा। पहले सम्मान की सब बातें बताएगा, 8 अंग और दोष 25 और जो जो बातें उसे बतानी होगी, फिर सम्यक ज्ञान की बात करेगा, सम्यक चारित्र की बात करेगा, है ना। जैसे अब मैं आज नहीं कल के लिए बोलता हूं, अपने तीर्थंकर भगवान महावीर और सर्वोदय तीर्थ नामक किताब है उसमें से ऐसा छांट के निकाल के लाना कि उसे कैसे अधिकार रखे गए, क्या किया गया, पहले जो ढांचा खड़ा किया गया तो उसे कैसे बनाया गया, माने एक पेज में ढांचा बना के खड़ा करो, चार्ट बनाओ जैसा बनाना हो, फिर ये किताब लिखे जाने के पहले इसका ढांचा तो होगा ना, क्योंकि जो शास्त्र होते हैं उनकी टीका लिखनी पड़ती है तो ढांचा तो वो शास्त्र वाले बना लेते हैं, लेकिन जिसका ढांचा भी हम बनाते हैं तो अपन को ही पहले ढांचा पूरा बनाना पड़ता है। और तो अभी वो किताब सामने है तो फिर अपन को ढांचा तो बना, अपन फिर तो निकाल सकते हैं ना, निकालना चाहिए। और मैं जानता हूं जो गलती निकलेगी क्या, जो बना लोगे तुम वो भी जानता हूं, और लगभग जो नहीं बना पाओगे, ध्यान नहीं जाएगा, वो भी जानता हूं। तब तो प्रदीप का ये नाम वहां सोच कॉमन नहीं था, भाई दर्शन अधिकार, ज्ञान अधिकार, चारित्र अधिकार यही कॉमन थे जो जयसेनाचार्य को लगे कि भाई ये होना चाहिए, है ना। वो जो पंडित वृंदावन राज जी ने लिखा था जयचंद छाबड़ा को, जयचंद छाबड़ा ने लिखा था कि भाई मैं ढांचा खड़ा नहीं कर सकता, मुझे कोई टीका हो तो मैं टीका लिख दूंगा। वो सब अनुभव करते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, कह रहे नहीं ना। ऐसा नहीं है कि कोई ये महसूस नहीं करता हो कि मैं लिख सकता हूं फिर उसने नहीं लिखी हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। यदि वो समझता है कि मैं लिख सकता हूं तो वो लिखेगा ही लिखेगा, ख्याल में आए ना। सही घटना है कि पवैया जी ने एक विधान बनाया था और वो विधान उदयपुर के आश्रम में कराया जा रहा था और हम सब थे, जतीश भाई वगैरह सब हम थे, अभय जी भी थे। अभय जी एक जयमाला का अर्थ कर रहे थे और ये कह रहे थे उसमें कि इस पूजा की जयमाला में मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा। मैं लेट जाने वालों में हूं ना, तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा यहां, जैसी सुविधा तो थी नहीं कि मैं घर से ही सुनता आता हूं। तो उसने उस वक्त ये कह रहे थे, मुझे बड़ा पता लगा कि पवैया जी का विधान हो रहा है, वो इनने क्या लिखा है इनकी पूजा में। तो मैंने उन्हें पूछा, ये विधान आपने लिखा क्या? नहीं, मैंने पवैया जी ने। तो तुम ऐसा बोल रहे थे कि इसकी जयमाला में मैंने ये लिखा, कहां जयमाला मैंने लिखी है? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ये किसी चीज का लेखन वो सादे में नहीं होता। सगे भैया हों, कैसे हों, पार्टनर से हों, बाप दादों के हों, कैसी भी हो, ये एक तो उसकी ही संपत्ति है वो जिसने लिखी है। उस साहित्य में दो आदमी के बंटवारा नहीं होते हैं, पर होते हैं तो वो अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक किताब के हैं और दो पाठ हैं उसमें, एक पाठ मैंने लिखा और एक पाठ आपने लिखा, तो भी संपादक तो इसमें एक ही रहेगा, संभव नहीं ना, आप समझे ना। तो ये विधान में ऐसा नहीं होता कि एक पूजा में दो छंद आपने लिख दिए और दो छंद मैंने लिख दिए, तो फिर लिखेंगे कैसे? यहां तो आपने बता दिए, ये कहां कहां बताने जाओगे? इसमें लिखो तो लिखोगे तो किस किस को जवाब दोगे? कैसे जवाब, ये नहीं आप कह सकते हैं। ये बात ये नहीं हो सकती है कि उन्होंने लिख दिया जयमाला, इसने ये लिख दी, इसने ये कर दिया। जो तुम्हें करना हो करो, तुम अपनी बात के राजा हो, लेकिन लिखने की पद्धति में तो वही लिखा जाएगा जो है, और प्रकाशक नहीं कर सकता। तो मैं प्रकाशक के नाते आपसे कहता हूं कि ऐसा नहीं छप सकता है? अब वो ये है जो देवागम स्तोत्र है ना, और उसका जो हिंदी अनुवाद है एक पूजन में किसी में, और उसमें वो कहते हैं जी मैंने किया है। और भी ऐसे काम हुए हैं, लेकिन मैं एक उपन्यासकार है राजेंद्र यादव और मनु भंडारी, नाम सुने होंगे, तो उन्हें एक उपन्यास ऐसा लिखा है कि स्त्री का पात्र पाठ जो वो है ना, वो लिखती है उसकी पत्नी मनु भंडारी, मनु भंडारी से तांबर जैन है, वो यादव है, राजेंद्र यादव वो लेखक है, तो जो पुरुष का पात्र का पाठ है वो लिखता है। एक एक चैप्टर में वो अपनी बात कहती है, वो अपनी बात कहती है, मानो पत्रों में जवाब दे रहे कि उसने एक पत्र लिखा पत्नी की तरफ से पति को, तो मनु भंडारी ने लिखा राजेंद्र यादव को लिखा और वहां से उसने जवाब दिया। तो एक एक पत्र वो लिखते हैं, पूरा उपन्यास बन जाता है, कहानी बन जाती है ऐसी है। तो ऐसे नए प्रयोग हुए हैं, तो ये नए प्रयोग हैं, तो ऐसा प्रयोग भी नहीं है, क्योंकि ये तो चिंतन की बात है। चिंतन में साझेदारी नहीं होती है, भैया आध घंटा तू सोच ले फिर आध घंटा मैं सोच लूंगा, क्यों? कि आध घंटा तू प्रवचन कर ले फिर आध घंटा मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। लेखन में, चिंतन में है? तो इसलिए वो तो वो एक कॉमन मतलब मेरे पद्धति चलती है, उससे कोई अलग पद्धति कोई चलाता है तो उसको पूरा सतर्क सिद्ध करना पड़ता है, बताना पड़ता है ये क्यों उचित है। अब ये देखिए, ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व, प्रज्ञापन, ये शब्द जरा अपने आप अटपटे हैं एकदम, जो धारा में प्रचलित नहीं है। किसी चीज को फिर लिखें तो ऐसा नहीं था, अपने आप कोई किताब लिखी चाहे तत्वासूत्र लिखा चाहे समय साल कोई भी लिखा तो पहले समय ज्ञान अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार और ऐसा ही ये सब लिखते चले जाते हैं। तो उनने वैसे ही किया लेकिन वे बाद में हुए ना, इसलिए विवाद खड़ा हो गया। पहले वो लिखते थे दर्शन अधिकार तो कुछ बात ही नहीं थी, कोई पूछता ही नहीं, बात ही नहीं करता। फिर अमरचंदाचार्य लिखते तो वे अपनी बात को सिद्ध करते। अब इनने लिख दिया पहले और इतने बड़े आचार्य, भाषा अच्छी नहीं लगती है लेकिन साहित्य के क्षेत्र में कही जाती है कि जो पहले के सब लेखकों को खा गए। क्या 1000 बरस में समय साल की कोई टीका नहीं लिखी गई होगी संस्कृत में, ऐसा संभव नहीं है। जब बीच में आकलंग जैसे आचार्य हो गए हों, ऐसे ऐसे आचार्य हो गए हों, समझे ना, पर टीका ही नहीं हुई हो समय साल की अमृतचंद तक, नहीं है। सैकड़ों टीकाएं लिखी होंगी लेकिन ये अमृतचंद की इतनी उत्कृष्ट बनी कि सब पठन पाठन में जेई आ गई और दूसरी पठन पाठन में से ही गायब हो गई। इसको खा जाना बोलते हैं कि वो उसको चलन चालन पाठन में से हटा देती है। कोई एक चीज चलती है ना, भगवान के मंदिर में रोजीना स्तुति चलती है तो सब जन एक ही स्तुति बोलते हैं, उसका नाम रख ले सकल गेय की स्तुति। अब सकल गेय की स्तुति ऐसी भक्तांबर का स्तोत्र है, सकल गेय की स्तुति हिंदी में भी ऐसे नाम रखे ना हमने, राजा राणा की लारा भावना रखते रख लेते कि नहीं रख लेते हैं। वो चलने लगती है फिर कोई जबरदस्त आती है जो उससे भी बढ़िया होती है, फिर उसको भी धीरे धीरे मार्केट में से हटा देती है, फिर वो दूसरी चलने लगती है। साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसा होता रहता है लेकिन वे कोई लड़ते मरते नहीं है लेखक, वे तो बेचारे अपनी भक्ति करते हैं। कोई भी आदमी लिखता है कोई कविता तो वो अपनी बढ़िया से बढ़िया लिखता है, लेख लिखेगा तो बढ़िया से बढ़िया लिखेगा, वो 19 क्यों लिखेगा कोई भी आदमी। और फिर वो जिसमें जो चल जाती है वो चल जाती है, जिसमें ताकत होती है वो चल जाती है, उसने कोई तलवार नहीं मारी, उसने गोला नहीं मारा उसके ऊपर फेंका नहीं है, उसने किसी से जाके कहा नहीं कि तुम ये नहीं करो ये करो, मेरा मतलब समझेगा ना। वो भाषा जैसी जो समालोचक करने लगते हैं वैसी भाषा में वहां होता नहीं है। ये क्रिकेट वाले पत्रकार, उसने उसे उड़ा दिया, उसने उसे गाड़ दिया, उसने हैं ऐसे एकदम मार रहे हो, और ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब अपना अपना काम करते हैं। ये राजनीतिक समाचार पढ़ो तो ऐसा लगता है कि खूब खचाखच हो गई होगी और सोनिया गांधी ने भी तलवार चलाई होगी और एकदम जोरदार चोट लगी होगी। जब समाचार में पढ़ते तो टाइम टाइम से कुछ नहीं निकलता है। उनसे किसी ने पूछा कि ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, तो उनने कहा सोचेंगे। सोचेंगे क्या होता है आप समझ लो, समझ लीजिए सोचेंगे क्या करते हैं। उन्होंने कहा देखेंगे, तो वे क्या देखेंगे, उनने क्या देखा आज तक, हमने उन जैसे वो 36 को दिखा दिया, क्या है कैसी जबरदस्ती थे, उनने तो कुछ कहा ही नहीं था। मैंने उसको बिल्कुल युद्ध की भाषा दे देते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो कोई खेल हो चाहे वो कोई भी प्रकरण हो, लेकिन युद्ध की भाषा एक कहते हैं ऐसा आचार्यों ने नहीं किया, लेकिन फिर भी जो समालोचक है ना वो इस भाषा में बात करते हैं और वो होता है कि वो चीज हट जाती है दूसरी चीज आ जाती है। तो जब ये नाम आए तो अब समझो उसके बाद की तो किसी की हिम्मत पड़ी नहीं ये लिखने की कि भाई इस पद्धति को टाले, और इसलिए वो पद्धति गायब हो गई। अब जैसे ने हिम्मत करी, उनकी लाइन अलग थी ना, कौन सी लाइन थी उनकी, कल तक बताया था, करुणानियोग की और न्याय शास्त्र की, वो दोनों चीजें बताना बहुत जरूरी समझते थे। इसका शब्द कैसे बना और इसमें कौन सा न्याय लगता है, ये दो बातें जैसे न कारगी टीका में मिलेगी, ये जो बात कही है वो कौन से नए से कही है, वो एक ये बताएंगे और इसकी शब्द बना कैसे है, दूसरा ये बताएंगे, तो बिल्कुल अलग चीज होगी, मिलेगी नहीं उनमें। तो उनको वर्गीकरण में भी वो पुराना ही जैसा, अब उनके सामने दो हो गए ना, एक तो जो जनरल चला आता दर्शन ज्ञान चारित्र वाला समझ गए ना, और दूसरा ज्ञान तत्व वेद तत्व विज्ञापन और चरणान योग चूल का वाला। लेकिन दूसरे में उनने कुछ किया, देखो उनने क्या क्या सोचा था, सोचो उन्हें तो मैं बताता हूं अभी आपको। उनको एक प्रॉब्लम आई थी, आई होगी कि भाई अपने तो दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, इसमें तो पहले में ज्ञान की बातें हैं और दूसरे में ज्ञेय की बातें हैं, हम दर्शन ज्ञान का नाम ही नहीं है। तो पहले अधिकार को दर्शन अधिकार कैसे लिखे, आप सुन समय दर्शन अधिकार पहले अधिकार को कैसे लिखे, और दूसरा अधिकार ज्ञेय अधिकार को ज्ञान अधिकार कैसे लिखे। मैंने वो इतना आसान काम नहीं था, अमृतचंद ने भी बहुत माथा लगाया होगा और उनको ऐसा लगा कि हम ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन लिखें पहले का और दूसरे का नाम ये तत्व प्रज्ञापन लिखें, ना सम्यक ज्ञान लिखा उनने और ना सम्यक चारित्र लिखा। असम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ही नहीं लिखा तो चारित्र का कहां सवाल था, इस बीच में चारित्र कहां से टक गया, तो उन्होंने उसे चरणानुयोग सूचक चूल का कह दिया। समझे अमृतचंद ने क्या किया, वो तो दर्शन ज्ञान चारित्र को तो उन्हें बैठा ही नहीं, कहीं बात ही नहीं है। उपलब्ध टीकाओं में सबसे पहली टीका है वो संस्कृत की, और उसके पहले की दूसरी कोई होती तो उस पर देखकर विचार करते। अब 300 अब मैं दूसरे बात पलटता हूं, 300 बरस तक अमृतचंद की तरफ कोई आंख नहीं उठा पाया। अब भी वही भाषा आ गई थोड़ी, मैं 300 बरस तक किसी आदमी ने ये नहीं क्या लिख पाया कि मैं इससे सहमत नहीं हूं क्या, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए और अधिकारों के नाम ये होना चाहिए। 300 बरस तक कोई आंख नहीं उठा पाया। आखिरकार जैसे नाचार्य ने हिम्मत की और हमने हाथ उठाया, नहीं ना, लेकिन बहुत उनको मुश्किल हुई। मुश्किल कहां दिख रही तुम्हें, बार बार उन्हें कहना पड़ा, एक अर्थ ये भी सही है, इसको मैं गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन दूसरा अर्थ ऐसा भी किया जा सकता है। ये क्या है समझ गया, मैंने बराबर कुछ भी कहने के पहले 3 दफे उन्हें नमस्ते करनी पड़ गई, इसका मतलब ऐसा नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं, मुझको अमृतचंद का विरोधी नहीं समझा जाए, ख्याल में है ना, ये तो मेरा विनम्र मत है, इतनी भाषा में कि बाद वो लिख पाए। फिर भी एक दिक्कत थी, क्या कि पहले अज्ञान की चर्चा थी, अब उसे संबंध से अधिकार कैसे कहें, वो जयसेन का सम्म दर्शन भी नहीं कह सकते थे और इसका भी कोई सम्म दर्शन से संबंधित बात नहीं कह सकते थे। तो उन्हें ज्ञान तत्व उत्तरकाली ध्रुव वाला ज्ञान भी नहीं है यहां, यहां पर कौन है मालूम, सम्म ज्ञान वाला भी नहीं है, यहां केवल ज्ञान वाला है, इसलिए उन्होंने आदान आन प्रमाणम यहां से शुरू की बात। हा? शुद्धोपयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है शुद्धोपयोग के बाद उसकी बात शुरू करी। इसलिए केवल ज्ञान ये सर्वज्ञता का अधिकार हो गया, समझे ना, इसका सच्चे देव का अधिकार हो गया है, देव सदगुरु का है, समझ लो, तो सच्चे देव का अधिकार वो गुरु का मन है। चरित्र का वर्णन है जी शास्त्र में कि मैं आई हैं जो बातें हैं वो है, और ये देव मन सर्वज्ञता का वितरागता का वर्णन है। तो अब उनको फिर ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन शब्द उनको उचित लगा, ये उनका उन्हें नया निर्माण किया जिसके अंदर वो इतना भाव व्यक्त करना चाहते हैं। ये जो उसके अंदर में छपा हुआ रहस्य है जो मेरी समझ में आता है वो मैंने आपको बताया। अब इससे भी कठिन दूसरा अधिकार था फिर, उसे समझना कैसे दें, उसमें तो वर्णन तो उत्पाद है ध्रुव का है, और कहीं संबंध समझ में क्या वर्णन जिस में हो उसमें उत्पाद उद्भय ध्रुव का वर्णन हो, द्रिगुण पर्याय का वर्णन हो, तो बताओ ऐसा क्रम आता कहां है। लेकिन उन्होंने कैसे लिया उसमें संबंध अधिकार, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है ये उत्पाद व ध्रुव युक्त सत गुण पर्याय द्रव्यम, ये वस्तु का स्वरूप है और वस्तु का स्वरूप तत्वार्थ सिद्धानम संबंध दर्शनम के बिना नहीं होता, इसलिए न दर्शन क्या मन इतनी आसानी से नहीं निकलता है, सामने चारित्राधिकार भी नहीं निकलता है, क्यों नहीं निकलता है, तो उसमें तो अनुवृत्त महावृत्त और जैसे वर्णन आते हैं ना शुद्धोपयोग ऐसा कुछ है नहीं, विधिवत ऐसा वर्णन कहीं किसी चीज का है नहीं, समिति गुप्ति धर्मानुपरीक्षा परिसर जय चारित्र ये कुछ नहीं है। तो भी फिर उन्होंने चरणानी उछू चूल का लिखी और तो उसमें इतना लिखा था मूल गाथा में कि आज्ञा लेकर दीक्षा ले रहे, तो इन्हें आज्ञा कैसे ले रहे वो उसकी वो कर दिया बना देते हैं, क्या बोलते आप उस लोग अपने क्लर्कों से उनसे बनवा लेते हैं ना, ऑफिसरों से आई है तो ऑफिसर को मतलब वो बना दिया उसका खाका ऐसे जाए, माने वो ये कहना चाहते हैं कि कोई आज्ञा फाज्ञा नहीं है, ये आज्ञा तो सिर्फ विनय की भाषा है, वास्तव में तो सूचना है। तो उन्होंने ऐसी व्याख्या कर दी, ज्ञा माने जानना, आ माने मर्यादा पूर्वक, मर्यादा पूर्वक जानकारी दे देना, माने ए मैं वहां जा रहा हूं देख लेना जरा, ऐसी भाषा में बात नहीं करी, बहुत विनय पूर्वक भाषा में ये कह रही कि मैं दीक्षा लेके जा रहा हूं तो अपना ये सब काम संभाल लेना। तो क्यों क्या जरूरत थी इसकी, यही तो मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं थी, लेकिन इनकी व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, अराजकता ना हो जाए, और ये जंगल में छुड़वा ना दें, अखबारों में ना निकाल दें कि भैया हमारा खो गया है, हो जाएगी पुलिस मुझे पकड़ लाए, फिर इन्हें पकड़े अच्छे बच्चे को उड़ा देने के अधिक अपराध में। इससे बचने के लिए मर्यादा पूर्वक सूचना दे रहा हूं, मुझे इनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु जी थे, उनके उनसे बड़े भाई थे, उनका नाम था पंडित नंदलाल जी, बहुत सात्विक वृत्ति के थे, तो उनने दीक्षा ली थी और उनका नाम रखा गया था सुधर्म सागर, उनकी किताबें नहीं सुधर्म ध्यान प्रदीप ध्यान पर एक किताब है, श्राप का चार है सुधर्म श्राप का चार, श्रावक के आचरण पर एक किताब है, बहुत अच्छे विद्वान थे, एक किताबें संस्कृत में है, पंडित नंदलाल जी नाम था उनका, तो उनने मक्खना जी ने गया जब पहुंचे, जब दीक्षा थी तो उसी दिन दीक्षा समारोह में पहुंचे तो उनने कहा कि भाई साहब एक कम से कम हमको बता तो देते, हमसे पूछ तो लेते, हम दीक्षा लेने के नक्की कर लिया एकदम अचानक। तो उनने जवाब दिया क्या के लिए मुझे क्या पूछ लेते तुमसे, तुम क्या कहते, तो मंजूरी देते हैं? मुझे तुम्हारे घर में थोड़ी रहना था जो मैं पूछ लेता, मुझे तो छोड़ के जा रहा हूं, कुछ लेके नहीं जा रहा हूं, जो आप पूछे काय को पूछ लेगा। अच्छा तुम बताओ मुझे परमिशन देते कि नहीं, हम तो नहीं देते, तो इसीलिए पूछा नहीं मुझे तुम्हारी संपत्ति लाके आके बांटना नहीं है, मैं काय को पूछू, नहीं वो जिसे बांटना होती वो तो बार बार आगे कहता भैया मेरा हिसाब कर दो, भैया मुझे दीक्षा लेना है मेरा हिसाब कर दो। कैसी दीक्षा लेना है तुझे, उसके पहले हिसाब करना है और जिस जिसको देना है उसे उसको दे दूं, अब बोल दो हम दे देंगे। अरे ऐसा नहीं साहब, ऐसा नहीं, मुझे तुमसे कोई हिसाब करना नहीं आना है, मुझे तुमसे कुछ लेना नहीं है, तो मैं तुमसे क्यों पूछता और तुम मना ही करते, अब पूछता हूं, बोलो भैया दीक्षा लेना है? हाँ कहते हो तो मैंने तुम्हारी बात ही मानी है, बहुत बढ़िया बात हो भाई, और ना करते हो तो मुझे तुम्हारी माननी नहीं है। ये वो शब्द उनके थे और हमारे पंडित जी उनकी जयंती मनाते थे तो हर जयंती पर सुनाते थे कि ऐसा हुआ था जब उनने दीक्षा ली थी तब ऐसा हुआ था, ये हर जयंती पर सुनाते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि दीक्षा के महत्व में किसी की परमिशन के महत्व को तो वे हमारे नंदलाल जी इनकार कर चुके थे, कोई नहीं मान चुके थे कि मैं कुछ नहीं, ऐसे तो कोई भी किसी को रोक देगा, क्या देगा मैं नहीं देता हूं आज्ञा, एक दिन का चक्रवर्ती सम्राट वही बन जाएगा, क्योंकि आज्ञा मांगने आए हैं ना, तो उन्होंने आज्ञा की व्याख्या बताई, आ माने मर्यादा पूर्वक, ज्ञा माने जानकारी देना, विनय की भाषा पूर्वक ये जानकारी देना, समझे ना, ये मनुष्य लोग होते हैं तो इनको निकाला भी जाता है तो इज्जत से निकाला जाता है। प्रधानमंत्री कहते आप इसी पर दे दीजिए, अखबारों में छप जाता है प्रधानमंत्री ने इस्तीफा मांग लिया, उसका अर्थ है कि अब तो हो ही गया, अब तो बस खत्म गए, निकलेगी निकाल दिया, सब ऐसे निकाले उन्हें निकाल बाहर किया है, ऐसा अखबार सब छाप देते हैं, अभी कहाँ है, अभी तो उन्होंने मांगा है, अभी तो उन्होंने कहा है, अभी कहाँ दिया, इन बातों में कुछ दम नहीं है, ये तो इस्तीफे तो ऐसे ही मांगे जाते हैं बड़े आदमियों के, तो वो तो एक विधि है एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया है। तो अपनी बात चल रही थी कि जयसेनाचार्य ने 3 अध्याय के नाम रखे ना, अब अपन उस पर कमेंट्स कर रहे हैं फोन पे, ये पैरा पूरा पढ़ो जो मैं बोल रहा हूं इस पे पढ़ो, कौन पढ़ेगा अच्छी तरह से पढ़ो। क्या बात है,
इस ग्रंथ राज की विषय वस्तु को 3 महाधिकारों में विभाजित किया गया है, जहां एक और तथ्य प्रतिपि का टीका में आचार्य अमृतचंद उक्त 3 महाधिकारों को ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानियोग सूचक चूलिका नाम से अभिहित करते हैं। वही दूसरी ओर तात्पर्यवर्ती टीका में आचार्य जयसेन सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार और सम्यक चारित्राधिकार कहते हैं। प्रश्न, अधिकारों के नामकरण में आचार्यों में इस प्रकार के मतभेद क्यों है?
देखो मैंने कहा था जयसेन को भी एक प्रॉब्लम थी, पहले अधिकार का राज क्या रखे, क्या है बताओ जल्दी, सम्यक ज्ञान अधिकार, पद्धति तो सम्यक दर्शन अधिकार की है, सर्वगता में तो सम्यक दर्शन अधिकार पहले है, तो यहां भी ये समस्या थी, सीधी बात नहीं थी कि सम्यक दर्शन अधिकार सम्यक ज्ञान अधिकार रख देते, फिर आखिरकार तो उन्हें सम्यक ज्ञानाधिकार रखना पड़ा ना पहले अध्याय का, और दूसरे का नाम सम्य दर्शनाधिकार। तो उसमें तो वही की वही आफत है, क्योंकि वहां तो समझने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, वहां मालूम क्या बात हो रही है, कहां से शुरू होता है सम्य ज्ञानाधिकार, सम्य दर्शनाधिकार में जैसे नाचारिका ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञ तत्व प्रज्ञापन कहां से शुरू होता है। अथो कलु दब्य मयो दब्बाणी पुण क्या भणदानी है ना, क्या है गुणप्य भणदानी ते सिंपुम परे आया पज्य मुंडू ही परे समया। कहा है समय नहीं दिख रहा कहीं, फिर दूसरी गाथा पढ़ो, तीसरी पढ़ो, कहां है बताओ, कहां से संबंध है अधिकार निकाल है। दो तीन गाथाएं अच्छी तरह शांति से पढ़ो, परमात्मा समझ में आ रही बात क्या बता रहे हैं हम। हाँ हाँ इतनी देर लगती है, अच्छी बुलंद आवाज हो जिसकी, ऐसा बोला ढंग से, ऐसे तो हम ही बोल लेते हैं, फिर तुमसे क्या को बोलूंगा। सारा संबंध में दिख रहा कहीं, संबंध ऐसा दूर दूर दिख रहा कहीं, प्राकृत भाषा है तो समझ में नहीं आया हुआ, हिंदी पंजाने वाले पढ़ो और ध्यान से देखना। द्रुपगुण पर्याय की चर्चा हो रही है, सम्मा दर्शन के संदर्भ में हो रही है तो कम से कम स्टार्ट तो उससे करते हैं ना। मेरे कहने का मतलब इसमें से भी सम्मा दर्शन अधिकार ये नाम निकालना आसान नहीं था, दोनों ही जगह ऐसी बात थी विशिष्ट, और तो अमृत ने भी निकाला, जैसे ने भी निकाला, और आप सबके सामने भी खुला चैलेंज है, आप निकालना चाहें तो आप भी निकालना है ना। हमारी कौन मानता है, क्या करना मानकर, तुम्हारी तुम तो मानोगे, हम तो निकालने की कह रहे, मनवाने की कहां कह रहे। जैसन की कोई नहीं मानता तो जैसन क्या कर लेते, अमृतन की कोई नहीं मानता तो अपन क्या कर लेते। आपके तर्क में युक्ति में सब चीज में दम होगी तो सब मानेंगे, और नहीं होगी तो कोई नहीं मानेगा। ये प्रकरण पूरा हुआ। अब ये प्रश्न है कि अधिकारों के नामकरण में आचार्यों ने इस प्रकार का मतभेद क्यों है। अब कहते देखिए आचार्य भी लड़ते ही रहते हैं, और कुछ नहीं तो नाम में ये कहता है पप्पू रख लो, ये कहता है नहीं मैं तो दब्बू रखूंगा। नाम रखने में क्या था, इनमें इतना मतभेद क्यों है। तो उत्तर, मतभेद नहीं है, क्योंकि मतभेद तो तब हो जब विषय वस्तु के प्रतिपादन में विभिन्नता हो, यानी बात कहने में फर्क होता, प्रकरण ही बदल जाता, दूसरी बात कहे होते, दो ही बात नहीं कही होती, वो ही गाथा नहीं रखी होती आगे, तो हम कुछ बदलने की बात कहते, तो बदलने की तो बात है ही नहीं। अब उसी का अर्थ कैसे करने में, उन्हें कैसे लिया, वो उसकी बात है। ये मतभेद नहीं है, क्योंकि मतभेद तो तब हो जब विषय वस्तु के प्रतिपादन में विभिन्नता हो, वह तो है ही नहीं, इसलिए मतभेद का तो सवाल ही नहीं उठता। बात यह है कि आचार्य कुंदकुंद देव ने तो अधिकारों का विभाजन किया ही नहीं। जब बाप दादे बिना बंटवारे की संपत्ति छोड़ जाते हैं तो बच्चों में थोड़ी नोकझोंक होती ही है, समझे ना, ये लिखा दे उत्तर क्या देखो। बात ये है, क्या बात है, आचार्य कुंदकुंद ने अधिकारों में बंटवारा ही नहीं किया। मालूम आगे तो क्या है, एक अधिकार आचार्य ही खत्म कर देते हैं और एक दस गाथा आगे जाके करते हैं, तो 320वीं गाथा प्रसिद्ध है ना, एक आचार्य ने वहीं उसकी टीका खत्म कर दी, अधिकार समझे ना, मोक्ष अधिकार खत्म वहीं कर दिया, और दूसरा और 10-12 गाथा आगे ले जाता, वहां जाके शुरू करते हैं। 308 गाथा है ना वो किरमत पर्याय वाली, जी वो ही ताबत वाली, वे उसके पहले वहां तक ले जाते हैं, तो बताओ इसमें भी होगा। ये तो उन्हें पता है जैसे इनको कि अमृत ने पहले ऐसा किया, तो अमृतन का तरफ से तो कोई जवाब मांग ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे क्या करेंगे तो उन्हें तो पता नहीं था, अब जैसे के सामने मौजूद था वो, तो एक एक पंक्ति वो लिख रहे थे टीका की, तो उनकी ड्यूटी थी कि आचार्य अमृतचंद्र ने इसके बारे में क्या लिखा, और ड्यूटी नहीं थी, वो करते ही थे, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि हम अर्ध लिखने में बैठे हैं और कोई जबरदस्त लेखक हमारे सामने हो तो हम देखें ही नहीं कि उसने क्या लिखा, क्या देखना हमें है? देखते तो हैं ही कि उन्होंने क्या अर्थ लिखा, और फिर यदि बोई का बोई होता है तो चुपचाप शांति से लिखते जाते हैं, और यदि अलग उनके दिमाग में जचता है तो फिर एवं चेद एवं साध एवं चेद एवं साध शुरू होता है, यदि ऐसा मानेंगे तो उसमें ये दिक्कत है, ऐसा मानेंगे ये दिक्कत, इसलिए मैं निष्कर्ष के रूप में कहता हूं कि इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए, वैसे मुझे उससे भी कोई ऐतराज नहीं है, ऐसी भाषा में आती है बात, है ना। आचार्य अमृतचंद प्रथम तो टीकाकार है, प्रथम टीकाकार है, समझे ना, अतः उनका किसी से कोई मतभेद था इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, दूसरा मत सामने था ही नहीं, और आचार्य जयसेन ने अमृतचंद के वर्गीकरण को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, अतः मतभेद की बात नहीं खड़ी होती, कि मतभेद तो होगा, मतभेद क्यों हो जाएगा, वे तो विनम्रतापूर्वक हम पहले आपकी बात को सच्ची मानते हैं, हम तो अगर एक अर्थ ऐसा भी हो सकता, हम तो अत्यंत विनम्रतापूर्वक दूसरी बात अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, अतः मतभेद की बात ही नहीं है, हमें दोनों टीकाओं का भरपूर लाभ लेना है। वो कहते मतभेद की बातें सुन के तुम ये नहीं सोचने लगना कि हम कौन पढ़े, हम कौन से ग्रुप के हैं, जयसेन के क्या हमारे तरफ के, ये बहुत जल्दी होता है आजकल, ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं नेता, छोटे छोटे क्रिकेट खेलने वाले, ये बस उसने आज तक बल्ला नहीं उठाया, और एक मारा नहीं होगा, और मारा होगा तो गेंद में लगा नहीं होगा, ऐसे क्रिकेटर भी हम तो सचिन के पक्ष के, हम तो फलाने पक्ष के, यानी वही बड़े लोगों के नाम ले लेकर के और ये गांव गांव में ठोकते रहते हैं, कुछ भी है? वे लोग जाकर के बहुत प्रेम से बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं आपस में, और ये इधर जाकर के अपने एक दूसरे के सिर फोड़ते रहते हैं, क्यों इसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं मैं भी स्वीकार करता, अतः मतभेद की बात ही नहीं, हमें दोनों टीकाओं का भरपूर लाभ लेना चाहिए। हमारी ड्यूटी है हम दोनों को पढ़ें और दोनों का अर्थ गहराई से निकालने की कोशिश करें और जो जो तर्क उसके पीछे लगते हों लगाएं उसके पक्ष में। अपन तो दोनों के ही वकील हैं, मतलब हमको कोई एक को नहीं जिताना है, एक को नहीं हराना है, एक का समर्थन नहीं करना है, एक का विरोध नहीं करना है। हमें जो भी हम न्यायाधीश हैं, हमें निर्णय करना है कि सही ठीक कौन सा है। मेरी दृष्टि में प्रवचन सार की विषय वस्तु को देव सास गुरु के रूप में भी विभाजित किया जा सकता। ये हमने तीसरा हमने लगा दिया, लो बोलो कौन सा निकाला, पहला देवाधिकार, दूसरा शास्त्राधिकार और तीसरा गुरु अधिकार। देवसाज गुरु का स्वरूप स्पष्ट हो गया, जिसने देवसाज गुरु का स्वरूप स्पष्ट हो गया तो संबंध धर्म की भूमिका तैयार हो गई। विभाजित किया जाए ज्ञान तत्व प्रज्ञापन या सम्यक ज्ञान अधिकार में मुख्य रूप से देव के स्वरूप पर विचार किया गया है। जैन मान्यतानुसार देवों में अरहंत तो सिद्ध परमेष्टि आते हैं और गुरुओं में आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि आते हैं। अरहंत देव द्वारा प्रतिपादित और गुरुओं द्वारा लिपिबद्ध वाणी ही शास्त्र हैं। इस प्रकार ज्ञान तत्व विज्ञापन या सम्यक ज्ञानाधिकार देव का स्वरूप, गे तत्व विज्ञापन महाधिकार या सम्यक दर्शना महाधिकार में शास्त्र का और तरणानी सूचक चूलका में सम्यक चारित्राधिकार में गुरुओं का स्वरूप का प्रतिपादन है। तो तीनों हो गए, मिल गए देवसास गुरु और समझ ज्ञान चारित्र, ज्ञान तत्व के तत्व ज्ञापन और चरणानी चूलका। अब इतना माथा कब मारो जब पहले कम से कम तीन शब्द याद तो रहे। क्यों तीन रखने पड़ेंगे ना बबलू, अरे नौ रखने पड़ेंगे, तीन इनके तीन उनके और दो तीन मेरे। अरे क्या कर, क्या करते रहते, क्या तत्व चिंतन करते रहते हैं, क्या तत्व चर्चा करते रहते हैं, समझे, जानते ही नहीं है तत्व चर्चा क्या होती है, कैसे क्या की जाती है, उनके दिमाग ही में कुछ नहीं आता है, यानी खत्म ही नहीं होता दिमाग में से चल रहा है। जो लेन पढ़ते हैं तो उसमें से ही निकलता है, उसमें से ही निकलता है, उसमें से ही निकलता है, हैं? और ऐसा नहीं खेत तान के नहीं निकलता है, एकदम झरता हुआ निकलता है, झरता हुआ आनंद आता है ना, मुझे देखते हैं निरंतर। चलो कहां तक पहुंच गए, जैन मानता है तीसरा पैरा अतीन्द्रिय आनंद, ध्यान रहे मंगलाचरण में देव और गुरुओं को याद किया ही गया है। इसमें बहुत विस्तार से इतना कुंद कुंद ने इतना खर्च मंगलाचरण में इतने शब्दों का खर्च करने नहीं किया, समय सार जैसे शास्त्र में एक एक गाथा में निपटा दिया, वह भी शुद्ध भगवान को बस बंदित तू सब सिद्ध। नवोकार मंत्र वालों ने कम से कम पंच परमेश्वरी के तक तो बात करी है, और जो उनके ही समकालीन है हो सकता वे बड़े ही हों, लेकिन अपने अध्यात्म के ऐसे मगन थे कि उनका बहुत हो गया ना, ये सिद्ध बहुत है, अरहंत सब उनके उसमें आ जाएंगे, हाथी के पैर में सब समाते हैं। क्यों दे दिया कि नहीं दिया, विशेष रूप से आचार्य जयसेन की तात्पर्य वित्तीय टीका में बीच बीच में जो गाथाएं उपलब्ध होती हैं और जो तत्व प्रदीप का टीका में नहीं पाई जाती वे सभी अरहंत और सिद्ध परमेश्वरियों के स्मरण रूप ही हैं। देखो ये नहीं पढ़ता ना तो आपको मालूम नहीं पड़ता इसमें कितना माल भरा पड़ा है, स्पृष्ट भूमि में। वो अभी क्या कहते हैं कि देशेनाचार्य के टीका में करीब 45 कितनी इतनी गाथाएं ज्यादा हैं, अमृत जिंदगी में कम है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मुनिराज भी ऐसा क्यों करेंगे? तो उन्हें दोनों को जो प्रतियां प्राप्त हुई, ऐसा तो है नहीं ये नहीं दूसरी किताब ले आओ, फिर एक बनती थी तो एक ही होती थी बिरबा। अब वो लेखक गया तो भूल गया, ऐसा भूलते तो नहीं है। लेकिन असली बात क्या होती है सुनो, कि कुछ गाथाएं ऐसी होती हैं जिन पर जो बड़े आचार्य होते हैं वे टीका नहीं लिखते हैं। कोई बता सकता है ऐसा कोई? एक आध हाथ उठाकर कोई साथ उसने ऐसा देखा हो जिसमें गाथा लिखी हो टीका नहीं लिखी हो? बहुत है। प्रभाचंद्राचार्य को देखो, प्रमेय कमल मार्तंड को 25वीं जगह लिखा मिलेगा सुगम मीटर। ये तो सरल है, समझ लेना। ऐसा नहीं देते उसमें, वो टीका लिख रहा है उसका, तो कई का तो अर्थ लिखते हैं, कई पे बहस करते हैं, कई पे बहुत लंबी लंबी चौड़ी व्याख्या लिखते हैं, और तो कई पे इतना ही लिखते हैं सुगमम एतत्। ये तो बहुत सरल है, क्या लिखूं, और आगे बढ़ जाते हैं। अब वो अमृतचंद्र की टीका में अमृतचंद्राचार्य ने सुगमम एतत् ऐसा लिख के आगे बढ़ गए होंगे, और अथवा उनने इसकी भी जरूरत नहीं समझी। अब समझ लेंगे ये क्या लिखना है, ये सरल है। आप समझते हो किसी का अर्थ लिखो नीचे टिप्पणी में, तो ऐसा लिखते हैं इसका अर्थ सरल है इसलिए मैंने लिखना, पहले थी पद्धति। आपने देखी होगी दादा कई जगह सुगमम एतत् सुगमम एतत्, ये सरल है ये सरल है। तो उसने क्या किया, उस लेखक ने उससे कहा होगा कि आपने ख्याति टीका की नकल करानी है, तुम कर पाओगे? संस्कृत में है, बहुत कठिन है। कि हाँ कर पाऊंगा कर पाऊंगा। अमृतचंद की आत्मख्याति की कि हाँ, तो भी आत्मख्याति के ऐसे भगत हो गए हो कि उन्होंने जिस गाथा की टीका नहीं हो वो गाथा ही नहीं लिखी नहीं हो वह गाथा, वह गाथा ही छोड़ दी हो। वो तो ऐसा बहुत हो सकता है, ज्यादातर ऐसा ही हुआ होगा। इसलिए वे गाथाएं दूसरे आचार्यों ने वो टीका में शामिल ही नहीं मानी। अब इसका निर्णय कैसे करें कि वे शामिल नहीं मानी गई? कोई बताएगा कि कैसे करें इसकी रिसर्च? नहीं मिल जाएगा तो मैं बताता हूं। देखो ये जो इसकी रिसर्च कैसे करें कि यदि कोई मतलब की गाथा छूटेगी तो क्रम भंग होगा। हर गाथाओं में एक व्यवस्थित क्रम होता है, तो हमने गहराई से देखा है लेकिन कहीं कोई क्रम भंग नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगता है कि यहां से कोई दो चार गाथाएं गायब हो गई, जबकि बीसों बीसों गाथाएं गायब हैं, लेकिन टूटा हुआ कुछ दिखता ही नहीं। अब बोलो तुम, ये 20 का वो है छंद समय सार में कर्ता कर्म अधिकार की टीका में, एक से बद्धो न तथा परस्य, बिल्कुल एक से हैं। तो अमृतचंद ने लिख दे, लेकिन अमृतचंद जैसा आता है तो कह रहे तुम समझ लेना, बाकी तुम 19 लगा लेना। कुंद कुंद ने लिखा है ना ये ऐसी गाथाएं और तुम बना लेना, हमने तो बनाने का अधिकार दिया है हमें। किसी ने बना के लगा दी और किसी ने नहीं बनाई, क्या दिया करो इसमें लगा बना देना। हमने कहा गलती की, हमने बना के लगा दी, हमने अधिकार दिया आचार्य ने। और दूसरा कहता है नहीं लिखी, हमने भी ऐसी लिख दी कि बना के लगा देना, वो बना के नहीं लगे, ऐसा हुआ है। पर यदि किस 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 तरह अध्ययन आप कर सकते हैं समझे ना, तब आपको उसे पूरी बात जाने के गहराई में जाकर के मिले। और ये बात जो इतनी बातें मैं आपको कह रहा हूं, ये आप कहीं भी कभी भी प्रवचन करें और शुरू कर रहे हो प्रवचन सार, तो आप जो सब की सब बातें तीन दिन व्याख्यान में बिल्कुल निश्चिंताई से कह जाए तो समझ लो आपको प्रवचन सार आता है और गद्दी पे बैठ के प्रवचन करने का अधिकार है आपको। ये बड़ी बातें हैं, ये कोई तत्व की ऐसी गहरी बातें हैं जो तुम्हें नहीं आएंगी समझ में, ये लोग तुम्हारे अरुचि की द्योतक हैं। एक दफे तुम रुचि पूर्वक सुन लो व्याख्यान तो ये आएगी कि नहीं आएगी। ये जो इतनी बातें हैं तो मैं आपको वैसे ऐसे ही सुना देता दो दिन के प्रवचन में तो आप कुछ भी नहीं बोल पाते। फिर आपसे कहते क्या कहा डॉक्टर साहब ने बोलो, तो दो पांच मिनट अभी रोजाना बोलते हो तो बोलते कि नहीं बोलते, तो इसका मतलब आपको भी एक दफे में याद रहता है, रहता है ना रहता है, भाई ऐसी बातें होती हैं भाई, ऐसे तरह को युक्तियां होती हैं कि नहीं होती तो हम बना लेते हैं, उसमें क्या है। समय हो गया तुम्हारा भाई, अभी कल अपन कहां से पढ़ना शुरू करेंगे सुना कुछ नहीं हाँ चौथा प्यारा पढ़ेंगे। अब मैं कोशिश करूंगा कि जाने के पहले ये खत्म कर दूं और मंगलाचरण शुरू कर दें। तब मैं वापस आऊंगा तो फिर देखेंगे।